हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नव्यांशी अपनी मीटिंग के सिलसिले में क्लाइंट का वेट कर रही थी, इस बीच उसे अरमान होटल में दिखाई दिया। नव्यांशी के दिमाग में अभी भी वेद और शिवांशा के रिश्ते को लेकर थोड़ा बहुत शक था। वो सच के तह तक पहुंचने के लिए अरमान के पास आई, लेकिन अरमान काफी समझदार था। वो कुछ भी ऐसा वैसा कहकर शिवांशा की जिंदगी में मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता था। हर बात की तरह अरमान ने नव्यांशी को टाला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नव्यांशी उस पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन बजी। उसे एक मैसेज आया था, और वो रिमाइंडर मैसेज सिर्फ उसके फोन पर ही नहीं बल्कि वेद, वंश, आराध्या और अक्षत के फोन पर भी आया था। मैसेज को देखकर उनकी पलकें भीगने लगी थीं। वेद इस वक्त एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर रहा था। जैसे ही उसने मैसेज को देखा, उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे की तरफ कर दिया था। उसने जल्दी से पानी पिया और मन ही मन कहा, जब भी ये दिन पास आता है मन खुद ब खुद बेचैन होने लगता है। अब समझ आ रहा है कि चाह कर भी सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा है। वो वेद जो चौहान फैमिली की ढाल था, जिसकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उसकी पलकें भीगने लगी और वो इमोशंस कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपका रहा था। बहुत कम मौके ऐसे होते थे जब वेद ओवर इमोशनल हो जाता था। उनमें से एक उनके माँ बाप की बरसी का दिन था। ये मैसेज उनके पंडित जी की तरफ से आया था। पूजा और बाकी सारे दान पुण्य की तैयारी वो हमेशा देखते थे। बस चौहान फैमिली को उसमें शामिल होकर सब कुछ अपने हाथों से करना होता था। वेद खुद को कितना भी काबू करने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हो ही गई थीं। ये लगभग 12 साल पहले की बात थी। वेद उस वक्त लगभग 25 साल का था। वैसे तो चौहान एम्पायर अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन उनसे अलग वेद न्यूयॉर्क में एक नॉर्मल सी जॉब करता था। वो कंपनी से दूर रहकर बिजनेस सीखना चाहता था, इसलिए उसके डैड भरत चौहान ने उसे कभी नहीं रोका। जब ये हादसा हुआ, तब अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वेद इंडिया आया हुआ था। उसे आए हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे और अब उसे वापस जाना था। वेद अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। उसने कॉल पर कहा, हाउ कुड यू डू दिस विद मी? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे एक महीने के लिए लीव चाहिए और आप मुझे अभी वापस आने का कह रहे हैं। मैंने पूरे साल बिल्कुल भी लीव नहीं ली, बस मुझे अपने बर्थडे का टाइम अपने मॉम डैड के साथ स्पेंड करना पड़ता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? फैमिली मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनसे दूर रह रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सामने से वेद के बॉस मिस्टर रेड्डी ने कहा, मैं तुम्हें किसी तरह से प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ बेटा। जानता हूँ एक दिन तुम मुझे छोड़कर अपने पापा का बिजनेस संभाल लोगे, लेकिन वो मेरा ही दोस्त है तो मुझे दिक्कत नहीं है, वरना अपने इतने काबिल एम्प्लॉय को मैं कभी नहीं जाने देता। तुम्हारे बिना मेरे सारे काम रुक जाते हैं, तुम्हें आना ही होगा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है, प्लीज वेद। ठीक है, वेद ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा और कॉल कट कर दिया। उसे इस तरह बीच छुट्टियों में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह के सिर्फ 5 बजे थे। उसने सोचा था कि वो अपना दिन अच्छे से स्पेंड करेगा, लेकिन इतनी सुबह सुबह उनका कॉल आने पर उसका पूरा मूड बिगड़ गया था। लगता है इस बार फिर से मॉम के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी बहाने मैं शादी से बच जाऊंगा, वेद ने गहरी सांस ली। शोभा ने पूरा मन बना रखा था कि इस बार वो वेद की सगाई करके ही उसे वापस से न्यूयॉर्क जाने देगी, वरना उसे फिर से एक साल का इंतजार करना पड़ता जब वेद वापस लौटता। वेद वापस जाने से खुश नहीं था, पर हाँ, उसे अब एक साल और अपनी शादी को टालने का मौका मिल गया था। ये सोचकर उसे कुछ राहत महसूस हो रही थी। वो इस बारे में बात करने के लिए भरत और शोभा के पास जा रहा था। वो जानता था कि इस वक्त तक वो दोनों उठ गए होंगे और गार्डन एरिया में बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। वेद उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वेद जल्दी से दौड़कर उनकी तरफ गया तो उसने देखा देवराज बेरहमी से भरत के सीने पर तलवार से वार किए जा रहा था। वार इतना तेज था कि भरत मर चुका था, लेकिन भरत के मरने के बाद भी देवराज उन पर वार करने में लगा हुआ था। उससे यही जाहिर हो रहा था कि उसके दिल में न जाने भरत के लिए कितनी नफरत होगी। शोभा ने उसे पीछे से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे शोभा के गले को भी रौंद दिया था। एक ही वार काफी था उसकी जान लेने के लिए। कुछ ही पलों में उसका बेजान शरीर भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को तड़पता देखकर वेद की मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो जोर से चिल्लाया, देवराज ठाकुर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये पहली बार था जब वेद ने देवराज को उसके नाम से बुलाया था, वरना वो उसे काका कहकर बुलाता था। हर कोई जानता था कि देवराज ठाकुर भरत चौहान के लिए उसके बड़े भाई की तरह था। वो उसकी कंपनी में एक मामूली सा काम करता था, लेकिन बहुत विश्वासपात्र आदमी था। देवराज के चेहरे पर बिल्कुल भी अफसोस के भाव नहीं थे कि उसने अपने छोटे भाई जैसे इंसान को मार डाला है। वेद को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने जाकर सीधा देवराज का गला पकड़ लिया था। जिंदा तो आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वेद सर्द आवाज में बोला। तभी देवराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वेद की गर्दन पर वार किया। सही वक्त पर साइड होने की वजह से वो वार उसका गला नहीं काट पाई। अगले ही पल वेद की पकड़ देवराज के गले से ढीली होने लगी थी। उसके गले से बेतहाशा खून बह रहा था और वो नीचे गिर गया था। वेद यही दुआ कर रहा था कि आज उसके माँ बाप की तरह उसका शरीर भी बेजान हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो बच गया था। बदकिस्मती तो देवराज ठाकुर की भी थी जो वेद उस हादसे में बच गया। वेद ने फिर उसे पूरी तरह तबाह कर डाला था। पुरानी बातें याद आते ही वेद की आंखों में कैद आंसू बाहर आ गए थे। उसने जल्दी से उन्हें साफ किया और अपने गले के दाएं तरफ हाथ रख लिया था। वहीं पर देवराज ने उसे जख्म दिया था। हमेशा उन्होंने तुम्हें अपने सिर आंखों पर बैठा कर रखा, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। काश मैं तुम्हें भी उतनी ही दर्दनाक मौत दे पाता जितना तुमने मेरे मम्मी पापा को दी थी। मुझसे बचने के लिए तुम पुलिस के पास तो चले गए, लेकिन क्या फायदा, अपने परिवार को नहीं बचा पाए। बस वो आखिरी दो शख्स बचे हैं, उनके मरने के बाद ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वेद ने सिसकती आवाज में कहा। कुछ देर पहले जहां वो इमोशनल हो गया था, अब उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह सख्त थे। शिवांशा की बुरी हालत देखकर उसे भले ही कितनी दया आती हो, लेकिन देवराज ने जो किया था उसके बाद उस दया पर हमेशा उसकी नफरत भारी पड़ जाती थी। जब भी भरत और शोभा की बरसी का दिन पास आता, वेद का दिल बेचैन हो जाता था और वो सब पर गुस्सा निकालने लगता था। अब अक्षत और आराध्या को भी उसके गुस्से का मतलब समझ आ गया था। पहले आराध्या को वेद और शिवांशा के रिश्ते को लेकर फिक्र हो रही थी, लेकिन अब वो सब कुछ भूलकर पूरे मन से भरत और शोभा की बरसी की तैयारी में जुट गई थी। कुछ यही हाल नव्यांशी और वंश का था। वंश अपनी जरूरी मीटिंग को अटेंड करने के बजाय उन सभी ऑर्फनेज को शॉर्टलिस्ट कर रहा था जहां उनकी तरफ से डोनेशन जाता था। नव्यांशी स्लम एरिया में जा रही थी ताकि कल होने वाले डोनेशन को देख सके। वहीं वेद ने भी अपना काम बीच में छोड़कर प्रतीक को बुलाया। उसने प्रतीक से कहा, सारे अरेंजमेंट अच्छे से हो रहे हैं ना? मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ और एनजीओज और ऑर्फनेज शॉर्टलिस्ट कर देना।
भाई सब अच्छे से हो रहा है, वंश भैया और नव्यांशी देख रही हैं, प्रतीक ने भारी आवाज में कहा। उसके लिए भी भरत और शोभा बहुत मायने रखते थे और कारण सिंपल सा था। उसके माँ बाप की मौत के बाद भरत और शोभा उसका ध्यान रखने के लिए उसे अपने पास ले आए थे। भरत और शोभा के बाद ये जिम्मेदारी वेद ने बखूबी निभाई थी। जितना सम्मान वेद के भाई बहन उसका करते थे, उससे कहीं ज्यादा प्रतीक के दिल में उसके लिए प्यार और सम्मान था। वेद ने प्रतीक की तरफ देखा, वो इमोशनल हो रहा था। वेद ने उसके हाथ को सहलाया और नरमी से कहा, रोने से सब ठीक हो जाता तो मैं जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मैंने अपनी मम्मी पापा को खो दिया था। मैंने उनके अंदर अपने माँ पापा को ढूंढना शुरू कर दिया था और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब मैं थोड़ा संभलने लगा तो मेरे दूसरे माँ बाप को भी छीन लिया गया। ऐसा क्यों होता है भाई, जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं वही हमें धोखा देकर निकल जाता है, प्रतीक ने भावुक होकर कहा। प्रतीक का वीक पॉइंट एक ही था, जब भी शोभा और भरत की बात आती थी ना, तो ना तो उससे उसका गुस्सा कंट्रोल होता था और ना ही उसके इमोशंस। वेद खड़ा हुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया था। अपने भाई बहनों से भी ज्यादा खुलकर बात वेद प्रतीक से कर पाता था, क्योंकि इंसान की फितरत ही धोखा देना होती है। चिंता मत करो, अब हम किसी पर यकीन ही नहीं करेंगे कि वो हमें धोखा देकर जाए, वेद ने कड़वाहट से कहा। प्रतीक उससे अलग हुआ और हाँ में सिर हिला दिया था। वो वेद के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपने आंसू साफ किए। बातचीत का रुख बदलने के लिए प्रतीक ने कहा, मुझे थोड़े बहुत हिंट्स मिले हैं कि देवराज ठाकुर के पोते को कहाँ छुपाया गया है। वो लड़की ठीक कह रही थी, बच्चा ठाकुर फैमिली का नहीं है, लेकिन नाम उनका मिला है और उन्हीं ने उसे पाला है। तुम्हारी पहचान भी चौहान फैमिली से है। उम्मीद है कि अब मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेद ने कड़क आवाज में कहा। उसके कहने का मतलब साफ था कि वो किसी के लिए नरमी नहीं बरतने वाला था। अगर मौका दूसरा होता तो भले ही वेद जाने देता, लेकिन फिलहाल तो कल ही भारत और शोभा की बरसी थी और उसके जख्म पूरी तरह से हरे हो चुके थे। वेद ने कभी चौहान फैमिली के बच्चों को टारगेट किया ही नहीं था। आज उसका ये फैसला देखकर प्रतीक की आंखों में सवाल थे। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, कितने साल का है वो बच्चा? 15 साल का, प्रतीक ने बताया। मेरा अक्षत 11 साल का था। हम जिस हाल में वहां थे, सबसे पहले आकर उसी बच्चे ने देखा था। जितना बेपरवाह दिखता है उतना भी नहीं है। सब बरसी के कामों में लगे हैं ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पता भी है इस वक्त अक्षत कहाँ होगा? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जिसका प्रतीक ने ना में सिर हिला दिया था। तुम्हें नहीं पता पर मुझे पता है। ऐसा करो, ऑफिस में सब संभाल लेना, मैं अक्षत को देखता हूँ। बाकी हाँ, मैंने जो किया या अब करने वाला हूँ उसके लिए मुझे पूरी दुनिया कितना भी भला बुरा कहे या गलत समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है, और भगवान ना करे कि किसी भी इंसान को ये लम्हा महसूस तक करना पड़े। उनकी मौत नेचुरल होती तो मैं सब कुछ भूल जाता। जान से मारा गया है उन्हें, वो भी बेरहमी से, बिना किसी गलती के। तो मेरे दिल में भी उस कातिल के परिवार के लिए कोई दया नहीं है, वेद ने ठंडे स्वर में कहा। उसके सारे इमोशंस मानो मर गए थे। प्रतीक ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चला गया। वहीं वेद भी अपनी गाड़ी लेकर इस वक्त सीधे चौहान पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। वेद इस वक्त कभी घर नहीं आता था। गार्ड ने जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोला। वो तेज कदमों से चलते हुए सीधे चौहान पैलेस के बेसमेंट में जा रहा था, जहां आज भी भरत और शोभा से जुड़ी हर याद को, उनसे जुड़े हर छोटे सामान को संभाल कर रखा गया था। उनके परिवार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके जाने के बाद उस जगह पर कदम भी रख सकें, लेकिन अकेला अक्षत था जो उनकी याद में वहां आता था। अंदर जाने से पहले वेद ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को मजबूत किया। वो सीढ़ियां चढ़कर नीचे गया तो उसने देखा अक्षत एक कोने में अपने घुटनों में सिर रखकर अंदर ही अंदर सिसक रहा था। वेद के कदमों की आहट सुनकर वो समझ गया था कि कौन आया होगा। अक्षत जल्दी से खड़ा हुआ और उसने अपने आंसुओं को साफ कर लिया था। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। क्या कर रहे हो यहाँ पर? वेद ने सख्त आवाज में पूछा। आपको तो पता है ना, मुझे जब भी उनकी याद आती है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ऊपर से कल उनकी बरसी है तो बस आ गया। देखो ना भाई, आज मैंने एक नई चीज देखी थी। मॉम की साड़ियों का कलेक्शन काफी अपडेटेड था। नव्यांशी चाहे तो उन्हें खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए अक्षत जबरदस्ती हंसते हुए बातें कर रहा था। ऊपर से कमरे की लाइट भी बंद थी तो उसे लगा कि वेद को उसका चेहरा दिखाई नहीं देगा। वेद ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, बेवकूफ लड़का। अक्षत जो अब तक अपने इमोशंस को काबू किए हुए था, वेद के सीने से लगते ही वो बच्चे की तरह सिसकते हुए रोने लगा। आपको हर बार कैसे पता चल जाता है? अक्षत ने सुबकते हुए पूछा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कौन सा बच्चा किस वक्त क्या फील कर रहा है, वेद ने जवाब दिया। वेद अक्षत को संभाल रहा था। इस बीच शिवांशा ऊपर बालकनी में खड़ी थी। उसने वेद को अंदर आते हुए देखा तो वो भी हैरान थी कि इस वक्त वेद क्यों आया होगा। एक पल के लिए शिवांशा भूल गई थी कि सुबह ही वेद ने उसे खुद के सामने आने से मना किया था। वो वेद से बात करने के लिए नीचे जाने लगी, जबकि इस वक्त वेद के दिल में उसके परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। ऐसे में शिवांशा का वेद के सामने जाना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था, वो उसके जज्बाती से पूरी तरह अनजान थी और वेद के सामने जा रही थी। शिवांशा के ग्रह नक्षत्र ही खराब हैं, बाकी वेद की नफरत भी जायज है। अगर कोई फील करके देखे तो उसकी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो नया पाठ कल ही दे दूंगी। तभी कहती हूँ पढ़कर समीक्षा कर दिया करो।